जी, जब किसी पार्टी की तरफ से कोई मैनिफेस्टो या 100 दिन का प्रोग्राम दिया जाता है तो वो तो इस मफरूजे पे मबनी होता है कि वो पार्टी बसर इक्तदार आएगी। लेकिन पार्टियां बसर इक्तदार आ भी जाती हैं लेकिन वो बाज़ात पूरी तरह से खुद अकेले नहीं होती, तो उनको अपने मंशूर और अपने 100 दिन के प्रोग्राम के ऊपर भी कुछ समझौते करने होते हैं, क्योंकि जिस पार्लियामेंट के अंदर ये अक्सरियत मौजूद होनी चाहिए चीजों को मंजूर करने की, वो अगर मंजूर ना हो तो फिर जाहिर है आपको समझौते करके ही आगे बढ़ना पड़ता है। तो पहला जो चैलेंज मौजूदा हुकूमत को दरपेश होगा वो यही होगा कि वो अपने फैसले करने में उसको कंप्रोमाइज करने पड़ेंगे वो दूसरी पार्टियों के साथ जो उनके साथ शरीक इक्तदार हैं, क्योंकि कौमी असम्बली में भी उनको अक्सरियत हासिल नहीं है और सेनेट में तो उनके पास सिर्फ 12 अराकीन है, तो इसलिए दूसरी पार्टियों की जब तक उनके साथ शराकत नहीं होगी, वो उनके साथ फैसलों में शरीक नहीं होंगे, उस हद तक वो फैसले हो नहीं सकेंगे। तो पहला चैलेंज तो उनके सामने ये है और उसके बरखिलाफ सूरत हाल ये है कि तवक्कुआत लोगों की बहुत बुलंद है या बहुत बुलंद की भी गई है, तो लोग तवक्को रखते हैं कि एक नया पाकिस्तान जल्द अज जल्द वजूद में आएगा, और अगर वो नहीं वजूद में आएगा तो फिर लोगों के अंदर मायूसी भी पैदा होगी। तो एक बड़ा चैलेंज ये होगा कि एक तरफ वो फैसले करने में आजाद नहीं है तो उस तरफ तवक्कुआत बहुत बुलंद है। दूसरी सूरत हाल ये है कि उनको इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर ये भी एक मुश्किल का सामना या एक चैलेंज का सामना होगा कि वो इस्टेब्लिशमेंट जो हमेशा से पाकिस्तान के अंदर हुकूमतों के फैसलों में, हुकूमत के चलने या ना चलने में दखील रही है, उसको भी साथ लेके चलना बहुत जरूरी होगा हुकूमत के लिए। हो सकता है कि ये मौजूदा हुकूमत के लिए इक्तदार में आसान हो, क्योंकि ये मौजूदा हुकूमत जिस तरह से बरस इक्तदार आई है तो लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट का तआवुन उनको हासिल रहा है, लेकिन ताकत के मराकज अब एक से ज्यादा हो गए हैं। हमारी अदलिया भी इंतजामिया के बहुत से मामलों में दखील होती है, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी बहुत से तकाजे होते हैं, लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट को साथ लेके चलना भी एक चैलेंज होगा। और तीसरा बड़ा चैलेंज ये होगा कि एक टीम बिल्ड करें जो लोगों के अंदर एतमाद पैदा करे और वो चीजों को लेके आगे बढ़े, बावजूद इसके कि इस वक्त इमरान खान साहब इस पूरे निजाम के मरकज में खड़े हैं और हर चीज के ऊपर इमरान खान साहब की जाती स्टैंप बहुत वाजे नजर आती है, लेकिन वो सब काम खुद नहीं कर सकेंगे, उनको एक अच्छी टीम की जरूरत होगी। अभी जो टीम उन्होंने अनाउंस की है उसमें बहुत अच्छे नाम है, खासतौर पर उनकी जो एडवाइजर्स हैं उनमें चंद नाम बहुत आजमूदा और बहुत उनकी इंटेग्रिटी बियॉन्ड डाउट है, लेकिन वज़राए आला के मामले में जो नाम आए हैं उनके ऊपर मिला जुला रद्द अमल है, मिला जुला फीडबैक है, वो कॉन्फिडेंस उस तरह इंस्पायर नहीं कर रहे जिस तरह से पीटीआई की हुकूमत को करना चाहिए। तो ये एक सूरत तीन बड़े चैलेंजेस हैं जिनका इमरान खान साहब को सामना है।
हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मलिक बोस्तान साहब हैं जो सदर हैं पाकिस्तान की एक्सचेंज एसोसिएशन के, मलेशिया से हमारे साथ हैं। ये बताइए मलिक बोस्तान साहब कि किसी भी मुल्क के लिए जो फॉरेन एक्सचेंज होता है वो एक उसकी इकोनॉमी के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। पाकिस्तान के बारे में मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ खबरें आती रहती हैं, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में जो इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज की पोजीशन है वो क्या है और कितनी मुस्तहकम है?
पाकिस्तान की जो फॉरेन एक्सचेंज की पोजीशन है वो बहुत ही कमजोर है, क्योंकि हमारे जो है कम से कम 3 मंथ के इम्पोर्ट बिल होने चाहिए, उससे भी कम लेवल पे अभी खड़े हैं। तो इस हुकूमत को मैं समझ सबसे बड़ा जो चैलेंज सामना करना पड़ेगा वो फॉरेन एक्सचेंज का ही करना पड़ेगा, और क्योंकि आगे दिसंबर तक $1 अरब जो है इन्होंने पेमेंट भी करने हैं, तो अभी हुकूमत की नजरें जो है वो बड़ी 3 कंट्री पे मुनसर है। पहले तो अमेरिका के साथ उनके तलकात बेहतर बना के जो हमारी स्पोर्ट फंड उन्होंने बैन लगाया हुआ है उसको बहाल कराया जाए, दूसरा चाइना के साथ भी बड़े अच्छे रिलेशन है सीपैक की वजह से, और चाइना की पूरी कोशिश है कि پاکستان کے فارغ ایکسچینج کو کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ کہیں وہ استفال کی طرف نہ جائے، ان کے سارے منصوبے خاک نہ مل جائے. تو وہ بھی انہوں نے $2 بلین آپ کے سامنے ابھی اس حکومت کو پیش کیے ہیں. اس کا سعودی عرب نے بھی گرین سگنل دیا ہے، اسلامی ترقیاتی بینک نے بھی کہا پاکستان کو لون دینے کے لیے تیار ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں حکومت کی پالیسیوں پہ اور حکومت کے تعلقات پہ ہیں. تو حکومت کو بڑا اپنا بیلنس ہو کے چلنا پڑے گا، کسی ایک بلاک کی طرف نہیں جانا چاہیے، سب کو اس کے ساتھ نیوٹرل ہو کے رہنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان ترقی بھی کر سکتا ہے اور فارن ایکسچینج بھی اکٹھے کر سکتا ہے.